نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اچھے اور برے اعمال پر ہمارے گواہ کون ہوں گے؟ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے, 8 witnesses on our good or bad deeds. یعنی جب بھی انسان کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے تو کون ہے جو کل اس بات کی گواہی اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا, جیسے کہ اس وقت آپ یہاں اس ہال میں, ان کرسیوں پہ, اس زمین کے ٹکڑے پہ, اس کالج کے اس ہال میں, اور یہ کالج ساہیوال کے شہر میں, اور ساہیوال تحصیل کرتے کراتے پاکستان میں, اور پاکستان دنیا کے نقشے میں ایشیا کا ایک ملک ہے. میرے اشارے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ہال سے اگر باہر دائروں میں دیکھتے جائیں تو ہم سب اس وقت دنیا میں ہیں, اور یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. ہم جتنا زیادہ اس پر غور کریں گے, جتنا زیادہ سوچیں گے کہ میں کہاں ہوں, اتنے ہم کانشیس ہو جاتے ہیں. آپ اس ہال میں موجود ہیں, یہ احساس آپ کو کسی شادی ہال میں موجودگی سے بالکل مختلف فیلنگز دے گا. ہم ایجوکیشنل موڈ میں ہیں اس وقت, اسی ہال میں کوئی پارٹی ہو رہی ہوتی تو ہم سب پارٹی موڈ میں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو آج کی میں آپ کو دوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. وی آل آر ان ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ہال میں آنا یا ایگزامینیشن موڈ میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آنسریبل ہونا, جواب دہی. ایسی یقیناً آپ کے کبھی ایگزامس اسی ہال میں ہوئے ہوں گے. آپ کو دور دور بٹھا دیا جاتا ہے, تصور میں لائیے. جب آپ کو دور دور بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پیپر میں کیا آئے گا. دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس وقت کیا لگ رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں آتا. پھر سارا بھول گیا, ساری رات کافی چائے پی پی کے سوئی تھی تو پتہ نہیں اب دماغ بھی نہیں کام کر رہا. پھر اس وقت جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں بھی آپ مانگ لیتے ہیں. اس کے بعد پیپر بٹتا ہے, اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا ذہن میں لائیے. دل دھک 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 کرتا ہے, انسان اپنی دھڑکن کو خود بھی سن لے. پھر پیپر بٹتا ہے, جلدی سے گھبرا کے کیا کرتے ہیں, پورے پیپر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ آتا ہے نہیں آتا. اور سب سے پہلے وہ جو کہ مسٹ ڈو کمپلسری کوشچن جو کرنا ہی کرنا ہے اس پہ نظر جاتی ہے. پھر آپشنس, پھر بس کچھ امید کچھ خوف کے ساتھ آپ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں. آلموسٹ 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا پیپر کے, 5 سوال کرتے ہیں, انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کروں کیا کروں. شروع میں ذرا ریلیکسڈ ہوتا ہے, پھر جب ٹائم کم رہتا ہے تو گھڑی پہ نظر جاتی ہے کہ ابھی تو میں پہلے سوال پہ ہوں اور 1 گھنٹہ گزر گیا. دیٹ مین اب اگلے 2 گھنٹوں میں میں نے 4 سوال کرنے ہیں. کوئی بات نہیں, ایوریج 30 منٹ. اب آپ نے دوسرا سوال شروع کیا اور جب وہ ختم ہوا تو دیکھا کہ وہ اگلا بھی گھنٹہ اس میں چلا گیا. اب تو ٹارگیٹ اور سخت ہو گیا, اب 1 گھنٹے میں 3 سوال کرنے ہیں. اور وہ وقت یاد کیجئے جب بالکل آپ اینڈ پہ ایگزامینر کی طرف سے یہ وارننگز لے رہے ہوتے ہیں, 5 منٹ لیفٹ, 2 منٹ 1, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا پیپر چھین لیا جاتا ہے, چاہے آپ نے پورا لکھا کہ نہیں. ایکسکیوز می میم پلیز, تھوڑا اور تھوڑا اور, جتنا کو دے دیں کتنا کو. شاید کوئی اچھی میم ہو وہ پیچھے سے دوسرے کا لے لے, مائٹ بی شی ول گیو یو اے لاٹ آف کنسیشن, سب سے آخر میں آپ سے پیپر لے لیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس ایگزامینیشن ہال سے باہر جاتے ہیں. ناؤ یو ہیو اسسمنٹ ان یور مائنڈ, کتنے غلط کتنے ٹھیک. باہر کھڑی دوست, سناؤ تمہارا پیپر کیسا رہا؟ میرا کیسا رہا؟ کیسا تھا وہ جلدی تو وہ ٹھیک تھا. اور اسپیشلی اگر آپ میتھ کا کوئی پیپر دے کے آئیں, 2+2, یا پورے پاس یا پورے فیل, یاد ہے یعنی ایگزیکٹ نمبر ملتے ہیں اس میں, کٹتے نہیں ہیں, کیا وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنی دوست کے ساتھ جلدی سے آنسرس کو نہیں چیک کرتے؟ घर जाने तक कौन सब्र करे। और इस तरह से फिर आप एक अंदाज़ा लगाते हुए बस में, वैन में, रिक्शे में या गाड़ी में घर जाते हैं, और आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मेरे 3 आंसर गलत हो गए। चले, 3 का मतलब ये है कि अब दो दो भी नंबर का था तो 6 नंबर कम हो गए, 100 से आपके 94 आ गए। घर आकर एग्जैक्टली पेपर खोल के, किताब खोल के देखा तो 2 और भी गलत निकले। नाउ आपका असेसमेंट क्या होगा कि मेरे 100 में से 90 नंबर आएंगे। मैथ का पेपर है, पेपर भी बोर्ड का, टीचर भी कोई नहीं ऐसी जिसको हम कुछ कह सुन सके, मैम आपको नहीं पता मेरे कितने नंबर आते थे, ये है वो है। और फिर उसके बाद 2-3 महीने जो आपको बीच में रिलैक्सेशन के लिए, बल्कि प्रेपरेशन के लिए दिया जाता है, उसके बाद वो दिन आ जाता है जब आप धड़कते दिल के साथ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी को स्कूल में बुला के दिया जाता है, किसी का लिस्टें लग जाती और नंबरों पे नज़र है, और फिर उसमें से 2 में से 1 ही होगा उसके बाद। या तो आप अपनी उम्मीद से 5-10% ज़्यादा नंबर ले चुकी होंगी, या आपकी होप से आप 5-6% कम ले चुकी होंगी। दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। ये नहीं हो सकता कि आपने सोचा था कि 90 आउट ऑफ 100 आएंगे तो वो कह लीजिए कि 40 आ गए, और ये भी नहीं है कि 90 की बजाय 100 ही आ गए। दैट मीन आपका सही इंटेलेक्ट ही नहीं है। 19 भी इसका फ़र्क हो सकता है, 18 भी इसका भी फ़र्क हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि आप सोच रही थी मैं टॉपर्स में से होंगी, शायद फर्स्ट, शायद सेकंड, शायद थर्ड, और आप 33% पे खड़ी हैं। ये नहीं होगा। दैट मीन जो भी इंसान एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाता है उसको उसी वक्त अपना रिजल्ट ऑलमोस्ट पता होता है। दैट इज माई लेक्चर टुडे। ये दुनिया एक बड़ा एग्जामिनेशन हॉल। तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क व हुवा अला कुल्ली शयइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यू आर बीइंग टेस्टेड, हु विल डू गुड डीड और हु विल डू बैड डीड। इस दुनिया में हम सब के दिल को पता है कि हम कैसे हैं। जैसे मेरे आज के टॉपिक को सुनकर आप में से कुछ एक्साइटेड होंगे, और रियली गुड डीड्स, अच्छा कोई विटनेस होगा जो मैं अच्छे अच्छे काम करती हूँ उसका, दैट मीन अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, आप खुश होंगे। लेकिन सेम टाइम पे आप या कोई और इस बात से भी डर होगा, वो बैड डीड्स के भी विटनेस होंगे। और अगर मैं आपको ये कह दूँ कि गुनाहों पे 8 गवाह, 8 विटनेसेस ऑन सिंस, तो फिर तो आपकी जान ही निकल जाएगी, फिर हाथ कांपेंगे। यानी आज मैं गुड डीड के लफ्ज़ को ज़रा सा ब्लरी करती हूँ, क्योंकि आपकी उम्र में आप सब नहीं, लेकिन आपकी उम्र में गुनाह करने नेकियां करने से आसान होते हैं, नंबर एक। दूसरी बात है, गुनाह करने को दिल ज़्यादा कर रहा होता है नेकियां करने की नस्बत। तीसरी बात, इस उम्र में पूरा माहौल हमें एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, जवानी दीवानी, जवानी मस्तानी। और कब्र के बाद जब हशर के मैदान में खड़ा किया जाएगा तो 3 सवाल तो कब्र में, मन रब्बू का, मन रसूलू का, मन दीनू का। ये आज मैं आपको नहीं बताती, हमारी इसी सीरीज में एक लेक्चर गुजरा है, इंशाल्लाह पंजाब कॉलेज जोहराबाद में हुआ था, आप उसको सुनिए। तो उसमें 3 सवाल कब्र के और 5 सवाल हशर के दिए। मैं इसको रिपीट नहीं करती, एंड पे यूट्यूब का लिंक पूछ लीजिएगा, नूरुल कुरान टीवी, एक ही वर्ड है, और नूर के लफ्ज़ में यू है, NURULQURN, 3 दफ़ा यू डाल दें और नूरुल कुरान लफ्ज़ लिख लें, और आगे 2 T फॉर टॉम, V फॉर विजन। इस पे आप जाकर PK ट्रिप खोलिए, सीरीज में आपको एक और लेक्चर दिखेगा, उसमें से आप इसको सुन सकती हैं इंशाल्लाह। लेकिन कब्र के तीन सवालों के बाद जो हशर के पांच सवालों उसमें से एक सवाल आपकी एज को सामने रखते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला तजूल कदमन इब्ने आदम मिन इंदी रब्बी, आदम का बेटा क़यामत के दिन कदम भी नहीं हिला सकेगा, जिसको आप कहते हैं स्टिल स्टैंड, खड़े हो जाओ। टीचर कह सकती है, माँ बाप कह सकते हैं, कोई मैनेजमेंट का शख्स कह सकता है, डोंट मूव, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, ये सोच, जब तक कि उससे पांच सवालों के जवाब ना पूछ लिए जाए, और उन पांच में से एक सवाल बस आज। जिंदगी के बाद दूसरा सवाल क्या था? अन शबाब ही फी मा बिलाहु, जवानी कहाँ पुरानी की। ये नहीं कहा गया कि जवानी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ पुरानी की। पंजाबी में कहते हैं हंडाना, आपने ये कपड़े हंडाए हैं, वहाँ क्या होता है? जवानी पुराना करना। मीन अल्लाह ने तुम्हें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी थी, और जवानी में इंसान किसी दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। जवानी में मस्ती को दिल करता है, जवान बच्चों का मोटरसाइकिल का साइलेंसर फाड़ के गलियों से गुजरना और गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरना बड़ा दिल फरेब अमल होता है। या फिर 31 दिसंबर को क्या कहते हैं नया साल, न्यू ईयर मनाना, और इस तरह की मस्तियाँ। लेकिन अल्लाह कहता है बताओ तुमने जवानी कहाँ पुरानी की। तो आइए ज़रा आज कुरान से ही पूछते हैं कि जब जवानी में कभी मस्ती के नाम पे, कभी फ़न के नाम पे, कभी सेलिब्रेशन के नाम पे, कभी रोमांस के नाम पे, कभी लव के नाम पे, कभी एडोर के नाम पे, कहीं आई लव यू के नाम पे, या सो ऑन, जब गुनाह करने को दिल करे और उसको हम गुनाह नहीं कह रहे होते, हम सोच रहे होते हैं हमारी उम्र का ये तकाजा है, अब अम्मी तो बड़ी हो गई ना, खुद तो सब कर लिया, और ये प्रिंसिपल साहिबा को क्या पता इस उम्र में क्या जज्बे होते हैं, और इस पे सोने पे सुहागा, कोई रात को फिल्म देख ली, कोई ड्रामा, और खुदा न खास्ता जिसको कहते हैं कि जुलुमात नला जुल्म, रात जाते कॉलेज आते जाते किसी लड़के ने फूल फेंक दिया, कोई किसी ने इमोजी भेज दी, किसी ने आपके व्हाट्सएप पे कुछ गड़बड़ कर दी, कोई फेसबुक पे आपको ऐड कर लिया, अब तो दिमाग उसे उलझ जाता है। तो मेरी सारी तमहीद को सामने रखिए, आज आपको 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटनेसेस से मुतारिफ कराऊंगी कुरान की रोशनी में, और जो साथी हमें फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, और जो अब करेंगे उनको बता रही हूँ कि ये हमारा आज का लेक्चर पीके ट्रिप 22-23 का एक लेक्चर है, और इसमें हमारा जो थीम टॉपिक है वो क्या है, कुरान का मतलूब इंसान, अल्लाह ताला कैसा देखना चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें सिन फ्री कह लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी अल्लाह ने हमें सिन प्रूफ नहीं बनाया, वी कैंट बी सिन फ्री, लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ से हमें शुरू में मुतारिफ करा दिया था आदम और इबलीस के किस्से में, वो क्या था? गुनाह आदम से भी हुआ अलैहिस्सलाम, और गुनाह इबलीस से भी हुआ, सबको पता है ना स्टोरी। इबलीस का गुनाह क्या था? अल्लाह को क्या कहा? अना खैरु मिन्हु। अल्लाह कहते हैं वैस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लि आदम फसजदु इल्ला इबलीस, यानी उसने सजदे का इनकार किया था, अबा शिद्द से इनकार, अनकारा नहीं कहा, यह भी इनकार है, अरबी के लफ्ज है, अबा शिद्द जैसे रिजेंटमेंट, नो आई विल नॉट डू दिस, ये स्टाइल था उसका। अल्लाह ने कहा था ठीक, फिर आगे से बजाय इसके कि शर्मिंदा होता वो अपोलोजेटिक होने लगा, खलकतनी मिन नारिन व खलकता हूं मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे तो तूने आग से पैदा किया, और आना खैरु मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। रीजनिंग, जस्टिफिकेशन। आज आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन जब आप माँ बनेंगी तो आपको उस दिन ये बात समझ आएगी, और बच्ची भी ज़रा से आपके कद के आधे कद तक पहुँच चुकी होगी, उस दिन आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि गुनाह करना और डरना, शर्मिंदा होना, सॉरी मॉम, अम्मी माफ़ कर दे, ऐसा नहीं करूँगी, और इसके बरक्स अपने गुनाहों को जस्टिफाई करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इब्लीस ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, ये मेरी मजबूरी है, मैं तो करना ही पड़ेगा। इसके बरक्स फिर अल्लाह ने एक दूसरे किरदार से भी गुनाह सरज़द करवाया, एक भूल के ज़रिए, और वो क्या था, आदम और हवा से उस दरख्त का फल चखवा दिया। क्या कहा था, फला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। देखो सारी जन्नत खाओ, कुलू वशरबू हनीयम, जितना मर्जी खाओ, रगदन खुला खाओ, चोखा खाओ, जितना दिल करता खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब फटकना भी नहीं। दूसरे लफ्जों में कह दे सारी जन्नत हलाल और एक दरख्त हराम, और नाम रख दिया शजरे ममनुआ, डोंट कम क्लोज टू दिस ट्री। और शैतान को अल्लाह क्या कहूँ मैं, क्योंकि उसका अंजाम अल्लाह ने बता दिया है। सारी जन्नत की खूबसूरतियाँ, उसकी रानाइयाँ, उसकी अट्रैक्शंस को पीछे कर दिया, फीका, और सारी कशिश डाल दी उसे एक हराम में। आज भी यही करता है। हमारे पास हलाल एंटरटेनमेंट के बहुत सारे मौके हैं, हमारे पास हलाल रिलेशन का अल्लाह ने बहुत प्यारा तरीका रखा होता है, हमारे पास अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार मौजूद है, लेकिन शैतान गुनाह को अट्रैक्टिव और नेकी को बोरिंग करके दिखाता है। इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइए गुनाह की महफिल है कि नेकी की? कितने लोग कहते हैं कि नेकी की महफिल है, हैंड रेज करें। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा है जो कह सके कि ये तो गुनाह की महफिल है? एक भी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करूँ, आर यू इंजॉइंग? कौन कौन इंजॉय कर रहा है इस वक्त को? दैट्स द आंसर। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेकी में हमेशा बोर ही हो बंदा। और अगर आप 2-2.5 घंटे किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ कान बड़ी आवाज़ ना दे, पहले तो दुआ करूँगी कि अल्लाह कभी आपको ऐसी चीप प्लेसेस पे भेजे ही ना, कोई आपको मजबूर ना करे ऐसी जगह पे जाने का। लेकिन 3 घंटे से आप मुस्तकिल बड़ी बड़ी आवाज़ें और सब सुन रहे हैं, उस वक्त क्या ज़रूरी है कि आपको मज़ा आ रहा हो? हेडेक नहीं शुरू हो जाता, टायर्डनेस, फिर खौफ, कॉलेज का कहकर कहीं चली जाए, अम्मी अब्बू को पता है बेटी कॉलेज में, और आप किसी दोस्त के साथ थोड़ी देर फन के मोड में चलो कॉफ़ी पीते हैं, मज़ा आ रहा होता है उस वक्त, देख ना ले। और अगर वहाँ कोई लड़का भी बैठा हो, दोस्त ने किसी को बुला भी लिया, क्या वो दिन आपके लिए खुशी का दिन होगा? क्योंकि आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पल्पेशन होगी, जान निकल रही होगी, इधर उधर देखेंगे कोई इस होटल में मुझे देख ना ले, और एक ही दुआ होगी कि आज मैं खैर से घर पहुंच जाऊं बच के। वो भी गुनाह होगा, लेकिन गुनाह की उस महफिल में आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा याद करिए, आज लिख लें, गुनाह को शुगर कोटेड करता है, लेकिन अंदर कुनीन की गोली है, कसक, गिल्ट, थोड़ी देर के लिए हमें दीवाना बना देता है, मस्ताना बना देता है, हमें स्लिप कर देता है, और राइट अवे आफ्टर दैट दिल में गिल्ट, क्योंकि बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा वलव अल्का माजीरा। अल्लाह ने ये जो हमारे अंदर नफ्स लवामा डाल दिया ना, मलामत करने वाला नफ्स, ये चौकीदार है, ये अब्बा अम्मा की तरह सख्त चौकीदार है, हम पे सिक्योरिटी गार्ड है, फिर किया गुना ठहर जाओ, वो सारा मज़ा किरकिरा कर देता है हमारा, सिर्फ मज़ा उतनी ही देर है जितनी देर आप उस महफिल का हिस्सा बने हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद आप यूज टू हो जाए तो इसका अंदर क्या आपका इनर कोड ही बदल गया। तो ज़रूरी नहीं कि हर गुनाह की महफिल में मज़ा आए, और ज़रूरी नहीं कि हर नेकी की महफिल में आप बोर हों, लेकिन शैतान का ये काम है कि वो बंदे से पहले गुनाह करवाता है। क्या कहता है सूरह हशर में शैतान ने, क्या वो कुफर, कुफर कर, और जब बंदे ने कुफर किया तो कहता है इन्नी बरी हूँ, मैं तुमसे बेजार हूँ। तो क्या पता चला, इबलीस से गलती हुई, और ज़्यादा रीजनिंग देने लगा, अपनी मजबूरियों की लिस्ट खड़ी कर दी, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, कहा निकल जा, इन न कर अजीब, गेट आउट। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात भी की जाए। और जूं ही आदम और हव्वा ने दरख्त का फल चखा, फलम्मा ज़ाक़ा, फिर जब उन दोनों ने चखा, तस्निया ड्यूल के सीगे, तो अब अल्लाह ने जन्नत का लिबास तो उठा दिया। क्या पता चला? अब देखिए कि ज़मीन पे पहला गुना जो इब्लीस ने करवाया वो अल्लाह के हराम को हलाल करके दिखाया, पहली बात। और साथ ही साथ जिस्म से कपड़े उतर गए, हराम और नेकेडनेस, न्यूडिटी, ये भाई बहन है, एक होगा तो दूसरा भी होगा। सीक्वेंस और आफ्टर इफेक्ट ऑफ फर्स्ट सिन क्या था कि कपड़े उतर गए। बस यहां तक आदम शैतान के हाथों में ट्रैप हुए, दैट्स इट। सिर्फ चखा, और वो सूरत आराफ में जाके पड़ी, कसमें कहीं, वकास महुमा, आई स्वियर, आई एम योर सिंसियर, इन्नी क्या हूं मैं, नासिखुन, मैं तुम दोनों का खैर पाऊं, आई एम योर वेलविशर। वो कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कम ऑन, डोंट बी रिजिड, किसी को नहीं पता चलेगा, आई विल टेक केयर, कुछ नहीं होता, मजा बड़ा है, वो फन, जवानी, मस्ती, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर गई, ऐसी बातें कराता। लेकिन आदम पहली बात पे भूल के फिसले, लेकिन फौरन वतफिका, कुरान कहता है दोनों छुपाने लगे, यक्सिफान, चिपकाने लगे, ऐसे चिपकते नहीं जैसे स्टिकर स्टिक ऑन करते हैं, किससे, में वरकिल जन्ना का लफ्ज है, जन्नत के पत्ते उतार के कपड़ों की जगह पे अपने जिस्म पे चिपकाने लगे, यानी यहां शैतान नाकाम हो गया, यहां वो नाकाम हो गया। किस सोच के साथ कि हराम का एक लुकमा तो मुंह में डलवाया लेकिन नेकेड नहीं रहने दिया, बस यही है तौबा। और फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, वो दोनों ही पुकार उठे कि रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने तो अपने ऊपर जुल्म कर दिया, वी रॉन्गड आवर सेल्फ, वइल्लम तग़फिर लना, फिर अगर तुम्हें नहीं बख्शेगा, इफ़ यू विल नॉट फॉरगिव अस, वतरहमना, और तुम पे रहम नहीं करेगा, इफ़ यू विल नॉट हैव मर्सी अपॉन अस, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम खसारा पाने वालों में होंगे, वी विल बी लूजर, वी विल बी बैंकरप्टेड। ये है फर्क। एक जुमला आज का एक जम बना के लिख लें, आदम और इब्लीस के बीच में फर्क गुना का नहीं है, गुना उनसे भी हुआ, गुना इनसे भी हुआ, आदम और इब्लीस के बीच में फर्क तौबा का है। इस पर इंशाल्लाह अपनी सीरीज में किसी भी कॉलेज में मजीद आगे बात करूंगी तौबा पे, लेकिन आज लफ्ज गुनाह, आज का जर्म, आज का कोरोना, आज का वायरस, जिससे बचने के लिए मास्क भी पहनने हैं और वैक्सीनेशन भी करवानी है, फिर डबल डोज, ट्रिपल डोज और सुपर डोज भी लगवानी है, वो है गुनाह। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं। सबसे पहले सूरत हामीम सजदा, इसकी आयत नंबर 22 है। अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं, वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहदा अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़नंतुम अन्नल्लाह ला यालमु कसीरा मिम्मा तअमलून। मेरा पहला सवाल आप सबसे, सिर्फ अरबी का आयत सुनकर आप में से किसको इस आयत का तर्जुमा समझ आ गया, वो हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तीन हाथ खड़े हैं, माशाल्लाह, चार, पांच, नीचे तो आपके लिए स्लाइड पे लिखा हुआ है, अगर आप उसको ना देखें। चले मैं आपको लफ्जी तर्जुमे का टेस्ट करवाऊँ, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ताकि आप इस ठंडक को महसूस करें। एक साल हुआ होगा, मैं पहले भी इस कॉलेज में आई थी, आप महसूस, लेक्चर में कौन कौन था, मोस्टली न्यू क्राउड है, उसी भी मैंने आपको एक आयत का तर्जुमा कहलाया था ताकि आप इस स्वीटनेस ऑफ लर्निंग द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को फील करें। और उस दिन भी मैं एक रिक्वेस्ट करके गई थी कॉलेज में कि इधर कुछ ना कुछ करें, और यकीनन कुछ हुआ होगा, मेरे पीछे दोहराई का, सब मिलके पढ़ेंगे, वाह और
मां
जो
कुंतुम
थे तुम
तस्ततिरूना
तुम छुपाते या तुम छुपते
अन के
यशखदा गवाही दें अलैकुम
तुम्हारे खिलाफ
समुकुम
तुम्हारे कान
वा और
ला नहीं
अबसारुकुम
तुम्हारी आंखें
वला
और ना
जुलूदुकुम
तुम्हारी जिल्दें
ये स्किन
जुलूद जिल्द स्किन
वलाकिन
और लेकिन
जनन्तुम
तुमने गुमान किया
अन अल्लाह
के बेशक अल्लाह
ला नहीं
यालमु
जानता
कसीरा
बहुत कुछ
मिम्मा
उसमें से जो
तामलून
तुम अमल करते हो।
अब आपको इसमें लफ्जी तर्जमा तो समझ आया लेकिन बात पूरी समझ नहीं आई,
तो उसको समझने के लिए सुनिए बा मुहावरा तर्जमा।
तुम दुनिया में जुराइम करते वक्त जब छुपते थे और तुम्हें ये ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो ये समझा था कि तुम्हारे बहुत से आमाल की अल्लाह को भी खबर नहीं है। कितनी बड़ी हकीकत है। गुनाह हो नहीं सकता जब तक एक इंसान ये यकीन ना रख ले कि कोई नहीं अल्लाह देख रहा, कोई नहीं उसको पता। जैसे अम्मी अब्बू को नहीं पता चलता, इस तरह अल्लाह को भी नहीं पता चलता, अल्लाह ही। तो दुनिया में गुनाह उस वक्त आसान होता है जब इंसान अल्लाह के बारे में ये गुमान रखता है कि उसको पता ही नहीं है। जैसे हम पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो गुनाह नहीं कर सकते, छुप के करते ना जब वो घर नहीं होते या हम घर नहीं होते। बता के तो नहीं जा सकते कि अम्मी मैं जा रही हूँ फलां जगह, छुप छुपा के जाना पड़ेगा। हालांकि अल्लाह ने कितना आसान तरीका रखा है। मिसाल देती हूँ कि आपकी एज में मोहब्बत हो जाती है, दिल भी जाता है, लोग भी जाते हैं, लोग पूछते भी हैं तुम्हारा कोई नहीं है बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड तो एक गैरों का लिया हुआ हमने नाम लिया ना। आप नहीं, आज से 20 साल पहले भी मोहब्बत होती थी इस उम्र में, चाहे वो किसी कज़न से होती थी, किसी पुप्पो के बेटे से, किसी खाला के से, या रहा जाता गली में को हमसाया इधर उधर फूल फेंक देता होगा। लेकिन फ़र्क था, कुछ हयादारी थी, कुछ रवादारी थी। कोई लड़का किसी लड़की के घर की दीवार फलांग के अंदर आ जाए तो उसको इज्जत का चोर कहते थे, और माली बाबा अगर पकड़ ले तो कूट कूट के उस लड़के को बाहर भेज देते थे। और बदनामी के डर से माँ बाप किसी को कुछ कहते तो नहीं थे लेकिन बच्ची से बात नहीं करते थे, क्योंकि माल के चोर से ज़्यादा बड़ा इज्जत का चोर समझा जाता था। लेकिन आज गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, जो ना खूब था वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज हम भी और तो तरक्की कर ना सके वेस्ट की, मॉडर्न होने की, हमने ये कर ली कि उनकी गलत चीज़ों को अपना लिया। कहते इट्स ओके, बी लिबरल, वी आर अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो गुनाह की हो रही है। याद रखिए कि हमारे कान, जिससे आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी आंखें जिससे इस वक्त मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं, और हमारे जिस्म की ये स्किन, हाथ लगाकर अपने हाथों को अपने चेहरे को टच करिए, ये स्किन कितनी डेड है, बिल्कुल खामोश है, लेकिन ये उस दिन गवाही देगी। और इंसान को उस दिन पता चलेगा कि अल्लाह ताला उसके अमाल से बेखबर नहीं था।